My dear brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से कुछ को इस सभा में अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के प्रचारकों द्वारा निमंत्रण दिया गया होगा। उन प्रचारकों ने आपको बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के साथ अनुबंध बनाने का निमंत्रण पहले ही दे दिया होगा। आप में से अन्य इसे सुन रहे हैं क्योंकि आपने माता पिता पत्नी के निमंत्रण को स्वीकार किया है, या शायद आपके बच्चे ने इस आशा में आपको निमंत्रण दिया होगा ताकि आप पहले बनाए अनुबंध को वापस अपने जीवन का केंद्र बना लो। आप में से कुछ जो सुन रहे हैं उद्धारकर्ता के पास वापस आने का चुनाव कर चुके हो और आज उसके स्वागत के आनंद को महसूस कर रहे हो। आप कोई भी हो और आप कहीं भी हो, आप अपने हाथों में आपकी कल्पना से अधिक लोगों की खुशी है। प्रतिदिन और प्रति घंटे आप परमेश्वर के साथ अनुबंध बनाने या पालन करने का चुनाव कर सकते हो। अनंत जीवन के उपहार को पाने के मार्ग में आप कहीं भी हो, आपके पास बहुत से लोगों को महान खुशी का मार्ग दिखाने का मौका है जब आप चाहे परमेश्वर के साथ अनुबंध बनाने या पालन करने का चुनाव करते हो। आप चुनाव करते हो कि आप उनके लिए आशा की धरोहर रख छोड़ते हो जो आपके उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। आप और मैं इस प्रकार की धरोहर से आशीषित हुए हैं। मैं अपने जीवन की खुशी के लिए बहुत सा भाग उस पुरुष का ऋणी हूं जिसे मैं इस जीवन में कभी नहीं मिला। वे एक अनाथ थे जो मेरे परदादा में से एक बने थे। उन्होंने मेरे लिए आशा की एक बेशक कीमती धरोहर छोड़ी है। मैं आपको उन कुछ भूमिकाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें मेरे लिए यह धरोहर बनी थी। उनका नाम हेनरी कायरिंग था। वे बहुत धनवान परिवार में जन्मे थे। उनके पिता के पास कोबर्ग में जाकी, जो कि अब जर्मनी में है, अत्यधिक संपत्ति थी। उनकी माँ विस्कॉन्टिस कैरलोट वॉन ब्लूमबर्ग थी। हेनरिक कार्लोटा और एडवर्ड के प्रथम पुत्र थे। कार्लोटा की मृत्यु 31 की आयु में उनके तीसरे बच्चे के जन्म के बाद हो गई थी। अपनी सारी संपत्ति और दौलत एक सफल निवेश कारण खोने के बाद जल्द ही एडवर्ड की भी मृत्यु हो गई। वह केवल 40 के थे। वह 3 अनाथ बच्चे पीछे छोड़ गए थे। हेनरिक मेरे परदादा ने अपने माता पिता और विशाल सांसारिक धरोहर दोनों को खो दिया था। उन्होंने अपनी दैनिकी में लिखा था कि उन्होंने महसूस किया था कि उनकी सर्वोत्तम आशा अमेरिका जाने में है। हालांकि ना तो उनके परिवार ना कि कोई मित्र वहां था, उनके पास अमेरिका जाने की आशा की एक अनुभूति थी। वे सर्वप्रथम न्यूयॉर्क सिटी गए थे। बाद में वे अपनी छोटी बहन के साथ सेंट लुइस मिजोरी चले गए। सेंट लुइस मिजोरी में उनके साथ अंतिम दिनों का संत था। उनसे उन्होंने एल्डर पार्ली पी प्रैट को लिखा एक पैम्फलेट प्राप्त किया। उन्होंने इसे पढ़ा और फिर अंतिम दिनों के संतों के बारे में प्रत्येक शब्द का अध्ययन किया। उन्होंने प्रार्थना की, क्या वास्तव में वे स्वर्गदूत थे जो मनुष्य को प्रकट हुए थे? क्या कोई जीवित भविष्यवक्ता था? और क्या उसे सच्चा और प्रकाशित धर्म मिला था? 2 महीने के ध्यानपूर्वक अध्ययन और प्रार्थना के बाद हेनरिक को सपना आया जिसमें उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए कहा गया था। एक पुरुष जिसका नाम और पौरोहित्य पवित्र स्मृति है, मैं धारण करता हूँ, एल्डर विलियम ब्राउन ने विधि को पूरा किया था। हेनरिक का बारिश के पानी के तालाब में 11 मार्च 1855 की सुबह को बपतिस्मा हुआ था। मैं विश्वास करता हूं कि हेनरिक आयरिंग तब जानते थे जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं सच है। वे जानते थे कि अनंत जीवन की खुशी पारिवारिक बंधनों से मिलती है जो हमेशा कायम रहते हैं। जबकि उन्होंने हाल ही में प्रभु की सुख की योजना को प्राप्त किया था, वे जानते थे कि अनंत अनंत आनंद की उनकी आशा दूसरों को उनके उदाहरण को का अनुसरण करने के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर करती थी। हमारे परिवार की आशा की धरोहर के एक हिस्से के रूप में उन्होंने अपने वंशजों को लिए एक दैनिकी छोड़ी है। उस दैनिकी में मैं उनके लिए उनके प्रेम को महसूस करता हूं। उनके शब्दों में मैं उनकी आशा को महसूस करता हूं कि उनके वंशज हमारे स्वर्गीय घर वापस जाने के लिए उनके मार्ग पर चलने का चुनाव करेंगे। मैं कोट करता हूं, पहली बार जब मैंने एल्डर एंड्रस को बोलते सुना, मैं हमेशा अंतिम दिनों के संतों की सभा में शामिल हुआ हूं और ऐसे मौके असल में बहुत कम हैं जब मैं इन सभाओं में नहीं गया, क्योंकि इनमें जाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपनी दैनिकी में इसे लिख रहा ताकि मेरे बच्चे मेरे उदाहरण की नकल करें और कभी भी संतों के साथ शामिल होने के इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की अनदेखा ना करें। हेनरिक जानते थे कि उद्धारकर्ता के सदैव याद रखने और उसकी आत्मा को अपने साथ बनाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को हम प्रभुभोज सभा में नवीन कर सकते थे। यही वह आत्मा थी जिसने उनका मिशन के लिए समर्थन किया था, जिसके लिए उन्हें बपतिस्मा लेने के कुछ महीनों बाद ही बुला लिया गया था। वे अपने मिशन पर चले गए, अपने मिशन के प्रति विश्वासी रहने के उसके उदाहरण उसकी धरोहर के रूप वे 6 साल के लिए उस स्थान में गए थे तब इंडियन टेरिटरीज कहा जाता था। अपने मिशन में सेवा मुक्त होने के बाद वे ओक्लाहोमा से सॉल्ट लेक तक लगभग 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए थे। उसके बाद उन्हें परमेश्वर के भविष्यवक्ता द्वारा तुरंत दक्षिणी यूटा में जाने के लिए कहा गया। वहां से उन्होंने अपने जन्म स्थान जर्मनी के मिशन सेवा करने को कहा गया। उसके बाद उन्होंने उत्तरी मेक्सिको में अंतिम दिनों के संतों की कॉलोनी के निमंत्रण में मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित द्वारा निमंत्रण दिया गया। मैं ये तथ्य इसलिए नहीं बता रहा कि उनकी या जो कुछ उन्होंने किया या उनके वंशजों के लिए महानता दावा करूं। मैं इन्हें उनके विश्वास और आशा के उदाहरण का सम्मान करने के लिए बता रहा हूं, जो कि उन्हें हृदय में का जब उन्होंने यीशु मसीह की सेवा की थी जिसने उन्हें नियुक्त किया था। उन्होंने उन बुलाटों को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पुनः जीवित मसीह और हमारे स्वर्गीय पिता जोसेफ स्मिथ को न्यूयॉर्क राज्य में उपवन में दिखाई दिए गए थे। उन्होंने उन बुलाटों को स्वीकार किया, उनकी उन्हें विश्वास था कि पौरोहित्य कुंजियों और परिवारों को मोहरबंद करने की शक्ति के साथ प्रभु के गिरजे को पुनर्स्थापित किया गया था। यदि परिवार के पास अपने अनुबंधों का पालन करने का पर्याप्त विश्वास है, हेनरी कायरिन मेरे पूर्वज की तरह आप भी अपने परिवार को अनंत जीवन के मार्ग पर पावन अनुबंध बनाने वाले और परिश्रम और विश्वास के इनके पालन करने वाले प्रथम व्यक्ति हो सकते हैं। हम सबों के लिए जैसे ये हेनरी के लिए था, ये जिम्मेदारियां कभी सरल होती हैं लेकिन अक्सर कठिन होती हैं। लेकिन याद रखें, जिम्मेदारियां कभी कभी कठिन हो सकती हैं क्योंकि उनका उद्देश्य हमें जीवन के मार्ग में स्वर्गीय पिता और उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के साथ हमेशा रहने के लिए आगे बढ़ते रहना है। आप अब्राहम की पुस्तक में से शब्दों को याद करें, और उनके मध्य एक व्यक्ति खड़ा था जो कि परमेश्वर के समान था, और उसने उनसे कहा जो कि उनके साथ थे, हम नीचे जाएंगे क्योंकि वहां स्थान है और हम ये वस्तुएं ले जाएंगे और हम पृथ्वी बनाएंगे जहां वे रह सकें, और हम उन्हें साबित करने का मौका देंगे कि क्या वे उन सब बातों को करेंगे जो प्रभु उनका परमेश्वर उन्हें करने की आज्ञा देता है, और जो अपनी प्रथम अवस्था का पालन करता है उन्हें दिया जाएगा, और जो प्रथम अपनी अवस्था का पालन नहीं करते उनसे उस राज्य में उनका समान महिमा नहीं मिलेगी जो अपनी प्रथम अवस्था का पालन करते हैं, और वे जो अपनी दूसरी अवस्था का पालन करते हैं उनके सिरों में पर महिमा हमेशा हमेशा के दी जाएगी। हमें दूसरी अवस्था का पालन करना परमेश्वर के साथ अनुबंधों को बनाने और हमें दी गई जिम्मेदारियों को विशेषनीयता से पूरा करने पर निर्भर करता है। पावन अनुबंधों और का जीवन भर पालन करने के लिए यीशु मसीह में विश्वास की आवश्यकता होती है। क्योंकि आदम और हवा का पतन हुआ था, हमें लालच, परीक्षाएं और मृत्यु सर्वव्यापी धरोहर के रूप में मिले हैं। फिर भी हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता ने हमें अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता उपहार में दिया था। ये महान उपहार और यीशु मसीह के प्रायश्चित की आशीष सर्वव्यापी धरोहर लाती है उन सभी के लिए पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा और अनंत जीवन की संभावनाएं हैं जिन्होंने जन्म लिया है। परमेश्वर की सभी आशीषों में अनंत जीवन महानतम है। हमें ये केवल तभी मिलती है जब हम यीशु मसीह के सच्चे गिरजे में उसके अधिकृत सेवकों के द्वारा दिए अनुबंधों को बनाते हैं। पतन के कारण हम सभी को बपतिस्मा का शुद्ध करने वाला प्रभाव और हाथों को रखने से पवित्र आत्मा का उपहार पाने की आवश्यकता है। ये विधियां उनके द्वारा संपन्न की जाने चाहिए जिन्हें इन्हें करने का उचित पौरोहित्य अधिकार है। फिर मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा की मदद से हम परमेश्वर के साथ बना ये सभी अनुबंध का पालन कर सकते हैं, विशेषकर वे जो मंदिर में दिए जाते हैं। केवल इसी तरह से हम इस मदद के साथ कोई भी परिवार में सदैव के लिए परमेश्वर के बच्चे के रूप में असली धरोहर का अपना दावा कर सकता है। कुछ जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें शायद ये एक लगभग असंभव सपना लग सकता है। आपने उन विश्वासी माता पिता के दुख को देखा होगा जो अपने बच्चों के कारण दुखी हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने अनुबंधों को अस्वीकार कर दिया है या इन्हें तोड़ने का चुनाव किया है। लेकिन ये माता पिता अन्य अनुभवों से उत्साह और आशा प्राप्त कर सकते हैं। आलमा और राजा मुजाय के बेटे परमेश्वर की आज्ञाओं और अनुबंधों के विरुद्ध घोर विद्रोह के बाद वापस आए थे। छोटे आलमा ने देखा था कि उसका बेटा कोरिएंटन घोर पाप से विश्वासी सेवा को लौटा था। मॉर्मन की पुस्तक ये चमत्कार भी बताती है कि लेमनिया ने धार्मिकता से नफरत करने की परंपरा का त्याग कर शांति कायम करने के लिए अनुबंध किया था। युवा आलमा और मुजाया के बेटों के पास एक स्वर्गदूत भेजा गया। यह स्वर्गदूत उनके पास पिताओं और परमेश्वर के लोगों के विश्वास और प्रार्थना के कारण आया था। इन प्रायश्चित की शक्ति का मानव हृदयों पर कार्य करने के उदाहरणों से आप उत्साह और दिलासा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ने हमें सभी स्रोतों से आशा दी है जब हम उनकी मदद के लिए संघर्ष करते हैं। जो अपनी अनंत धरोहर को स्वीकार करते हैं उसने हमसे वादा किया है जब हम उसके पास लोगों और को लाने का प्रयास करते हैं, बेशक वह ऐसा करने से के उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। उनका अस्वीकार उसे दुख पहुंचाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, ना ही हमें हार माननी चाहिए। अपने निरंतर प्रेम के साथ वह हमारे लिए एक परिपूर्ण उदाहरण कायम करता है। और फिर से कितनी बार मैं तुम्हें एकत्रित करता, जैसे कि मुर्गी अपने चूजों को अपने परों के नीचे एकत्रित करती है। हाँ, ओ तुम इज़राइल के घराने के पतित लोगों, हाँ ओ तुम इज़राइल के घराने के लोगों जो यरूशलेम में रहते हो, जो तुम पतित हो, हाँ कितनी बार मैं तुम्हें एकत्रित करता हूँ जैसे कि मुर्गी अपने चूजों को अपने परों के नीचे एकत्रित करती है, मैं तुम्हें एकत्रित नहीं और तुम एकत्रित नहीं होते। आप स्वर्गीय पिता के सब आत्मिक बच्चों को उनके घर में उसके पास लाने के लिए उद्धारकर्ता की असफल ना होने वाली इच्छा पर निर्भर हो सकते हैं। जो हम कर सकते हैं उसे करने का स्वर्गीय पिता और उद्धारकर्ता इसका परिपूर्ण उदाहरण है। वे कभी भी धार्मिकता के लिए दबाव नहीं डालते, क्योंकि धार्मिकता को चुनना जाना चाहिए। वे धार्मिकता को हमें समझाने योग्य बनाते हैं और वे स्वयं देखने देते हैं कि इसके परिणाम बेहतरीन हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है मसीह के प्रकाश को प्राप्त करता है, जो सही और गलत को देखने और को महसूस करने में मदद करता है। परमेश्वर ने मानव सेवकों को भेजा जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें यह पहचानने में मदद करता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर सही बातों की आकर्षक को आकर्षक बनाता है ताकि हम अपने चुनाव के प्रभाव को महसूस कर सकें। यदि हम सही का चुनाव करते हैं तो हमें उचित समय पर खुशी मिलेगी। यदि हम बुराई का चुनाव करते हैं इसके साथ उचित समय पर दुख और पछतावा आता है। ये प्रभाव निश्चित है, फिर भी किसी उद्देश्य के कारण इन्हें पूरा करने में देरी की जाती है। यदि आशीष तुरंत मिलती तो सही का चुनाव करने से विश्वास का निर्माण नहीं होता, और चूंकि दुख भी कभी कभी बेहद देर से मिलता है इसके लिए तुरंत क्षमा पाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, इससे पहले कि हम इसके दुखी और पीड़ादायक प्रभाव को महसूस करें। पिता लेई ने अपने बेटों और अपने परिवारों के चुनावों कारण दुख महसूस किया था। वह एक महान और भला मनुष्य परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। वह अक्सर उन्हें उद्धारकर्ता यीशु मसीह की गवाही देता था। वह आज्ञाकारिता और सेवा का एक उदाहरण था जब प्रभु ने उसे अपने परिवार को विनाश से बचाने के लिए अपनी सभी संसारिक संपत्ति को छोड़ने का निर्देश दिया था। उद्धारकर्ता के समान और अपने परिवार के हृदयों को पहचानने और भविष्य के दुख और सुख दोनों को देखने की शक्ति के बावजूद लेही ने अपने परिवार को उद्धार की ओर ले जाने के लिए अपनी बाहों को फैलाकर रखा था। आप और मैं लेही के उदाहरण से क्या सीख सकते हैं? आप ऐसा धर्मशास्त्र का प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और अवलोकन द्वारा कर सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आप छोटा और बड़ा दोनों दृष्टिकोण रखें जब आप अपने परिवार के लिए आशा की धरोहर देने का प्रयास करते हैं। थोड़े समय के लिए परेशानी होगी और शैतान तंग करेगा, और कुछ कार्यों के लिए विश्वास में धीरज से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यह जानते हुए कि प्रभु अपने समय और अपनी तरीके से कार्य करता है। कुछ कार्य हैं जो आपको जल्दी करना चाहिए जब जिनसे आप प्रेम करते हैं वे युवा हो। याद रखें कि प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना, पारिवारिक धर्मशास्त्र अध्ययन और प्रभु भोज सभा में अपनी गवाही देना बहुत आसान और बहुत प्रभावी होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। छोटे बच्चे बहुत आत्मा के प्रति हमारे एहसास से अधिक संवेदनशील होते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं वे स्तुति गीतों को याद रखते हैं जो उन्होंने आपके साथ गाए थे। संगीत के अधिक वे धर्मशास्त्रों और गवाही के शब्दों को याद रखेंगे। अब पवित्र आत्मा ये बातें उन्हें याद दिलाएंगी, लेकिन धर्मशास्त्र और स्तुति गीत के शब्द अधिक समय तक कायम रहेंगे। ये यादें उन्हें वापस खींच लाएंगी जब वे लंबे समय के लिए संभवत वर्षों के लिए अनंत घर के मार्ग से भटक जाते हैं। हमें बड़े दृष्टिकोण की जरूरत होगी जब जिन्हें हम प्रेम करते हैं संसार के आकर्षण को महसूस करते हैं और संदेह के बादल उनके विश्वास पर छा जाते हैं। हमारा मार्गदर्शन करने और उनको शक्ति देने के लिए हमारे पास विश्वास, आशा और उद्धारता है। परमेश्वर के दो जीवित भविष्यवक्ताओं का सलाहकार के रूप में मैंने ऐसा देखा है। मैं विशेष व्यक्तित्व वाले लोग हैं। जब कोई गिरजे में किसी बात को लेकर चिंतित होता है उनका अक्सर जवाब होता है सब ठीक हो जाएगा। वे सामान्यतः समस्या के बारे में अधिक जानते हैं बजाय चिंता करने वाले लोगों के। वे प्रभु के मार्ग को भी जानते हैं और इसलिए वे हमेशा उसके राज्य के प्रति आशावान रहते हैं। वे जानते हैं वे मुख्य है। एनरिक आयरिंग के कुछ वंशज लगता है भटक गए हैं, लेकिन उसके बहुत से पड़नाती पोते परमेश्वर के मंदिर में सुबह 6 बजे उन पूर्वजों के लिए विधियों को करने जाते हैं जिन्हें वे कभी मिले नहीं हैं। वे आशा कि उस धरोहर के कारण जाते हैं जो उसने छोड़ी है। उसने एक ऐसी धरोहर छोड़ी है जो उसके वंशजों द्वारा प्राप्त की जा रही है। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, नासरत का मसीह उसका प्रिय पुत्र और हमारा पुनर्जीवित उद्धार करता है। ये उसका गिरजा है, इसमें उसके पौरोहित्य की कुंजियां हैं और इसलिए परिवार अनंत हो सकते हैं। ये हमारी बेशक कीमती धरोहर है। मैं प्रमाणित करता हूं कि यह सच है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।